الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل پڑھنا شروع کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں، اور اس کی شروع کی 6 آیات پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، خلاصہ تفسیر اور معروف و مسائل پڑھ کے مکمل کر لیے تھے. تو اب ہم جو ہے آگے کی 7 سے لے کے 14 آیات کی کا ترجمہ پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، جس میں کہ 12ویں آیت کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. اب ہم 13ویں آیت کا، جو ابھی تلاوت بھی کی گئی، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ان آیات کی خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 6 سے. تو اللہ تعالیٰ اب اس سورۃ النمل کے اندر پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا شروع کر چکے ہیں، اور اس میں ان کے قصے کا پوری تفصیل تو نہیں ہے، صرف وہ والا پورشن ہے کہ جس میں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے، اور ان کی شادی شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کے ساتھ ہو چکی تھی. تو ان کو لے کر کے آ رہے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، سردی بھی تھی اور بیوی جو ہیں وہ بھی امید سے تھیں، تو مشکل حالات تھے. تو ایسے میں ان کو ایک روشنی نظر آئی پہاڑ کے اوپر، طور پہاڑ کے اوپر. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے لے کر کے آتا ہوں وہاں سے کچھ روشنی بھی، کچھ آگ بھی لے کر آتا ہوں، اور کچھ خبر بھی لے کر کے آتا ہوں کہ تاکہ ہمیں راستہ واپس مل جائے اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے. تو وہ جب اوپر پہنچے تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم. اور پھر اپنا عصا ڈال دیجئے. تو جب ڈالا تو وہ پھر ایک پھن پھناتا ہوا سانپ بن گیا. اچھا، یہ سب کچھ ہم نے کیا. تو اس کے بعد پھر ہم فلما جاءتہم آیاتنا مبصرتن، یہ جو آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا، یہ نشانیاں، یہ جو دو نشانیاں ہیں، ید بیضا والی اور عصا والی، ٹھیک ہے، یہ میرے دو معجزے ہیں جو آپ کو میں نے عطا کیے ہیں. ان کو لے کر کے آپ فرعون کے پاس اور اسی قوم کے پاس جائیں. وہ لوگ جو ہیں بہت گناہوں کے اندر پڑ گئے ہیں. انہم کانو قومن فاسقین، وہ فاسق قوم جو ہے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب پہنچی ہماری آیات ان کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کو لے کر کے فرعون اور اس قوم کے پاس پہنچے. مبصرتن، آیاتنا مبصرتن، ٹھیک ہے، یعنی مبصرتن کا مطلب کیا کہ جو بالکل obvious تھی، بالکل واضح نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ جن سے کہ صاف یہ کنفرم ہو جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ کسی غیر نبی کے پاس ایسی نشانی اس زمانے میں ممکن ہی نہیں تھی. تو مبصرتن کا مطلب بالکل کلیئر، واضح، ٹھیک ہے. تو قالو، انہوں نے کیا کہا، دے سیب، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جادو ہے اور بالکل کلیئر جادو ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جادو ہے. اس طرح سے انہوں نے ریسپونڈ کیا اس کو. وجحدوا بها، اور انہوں نے، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے، ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، بها یعنی اس نشانی کا انکار کر دیا. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، عجیب بات یہاں پہ فرمائی، واستيقنتها، ٹھیک ہے، واو جو ہے یہاں پر आम जो वाव होता है ना, जिसका तर्जुमा एंड से करते हैं, अंग्रेजी वाला एंड, उर्दू वाला और, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, वाव जो है हालिया लगता है। हालिया का मतलब क्या होता है, जो कि हाल बयान कर रहा होता है। उर्दू में तर्जुमा करेंगे इस हाल में, या ये भी कह सकते हैं और हाल ये था कि, या हालत ये थी कि इस तयकनत, हाँ, इन लोगों को उस उन निशानियों का यकीन हो चुका था, ठीक है, अपनी जानों के अंदर, अनफुसुहम, उनकी जानों के अंदर, अपने जी के अंदर, यानी दे हैड नो डाउट इन देयर हार्ट्स, उनको अपने दिलों में कोई शक नहीं था कि ये अल्लाह की दी हुई निशानियां हैं, उनको कोई शक नहीं था, उनको यकीन था, इस तय कनत था, वो यकीन कर चुके थे, देखते के साथ ही पहचान गए थे कि ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये तो खसूसी निशानियां अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वही बात जो पहले भी आपके सामने कई दफा हो चुकी, चिड़, चिढ़ावनी, बुग़्ज़, अदावत, तकबुर, अनानियत, किसके साथ, किसके खिलाफ, ये सब कुछ किसके खिलाफ होता है, अल्लाह के नबी के खिलाफ। या अगर इसको जनरलाइज करें, जैसे आज ख्वातीन की क्लास में भी ये बात हो रही थी, नबी को जनरलाइज अगर करें तो नबी कौन होता है, एक तो वो होता है ना जिसके ऊपर वही आए, ये तो स्पेसिफिक बात है कि अल्लाह का नबी जो है वो शख्स होता है जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आए, ठीक है। लेकिन नबी का अमल क्या होता है, वो किस काम के लिए यहाँ पे भेजा गया होता है, वो तो हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्या मतलब, नसीहत करना, लोगों को नुकसान से डराना, बचाना, उनको हिदायत की बातें बतलाना, ये नबी का काम होता है, और ये काम जो है ना, ये जनरल है, ठीक है, क्योंकि ये नबी भी करते हैं और नबी के जो नाइबीन होते हैं वो भी ये वाला काम करते हैं। नाइबीन के ऊपर वही नहीं आती, वही तो सिर्फ नबी पर आती है, लेकिन काम दोनों कर रहे होते हैं, नसीहत वाला काम, ठीक है। तो इनको जब पता था अपने दिलों के अंदर, यकीन कर चुके थे इन निशानियों का, फिर भी इन्होंने क्यों कहा हादा सेहरुम मुबीन, झूठ बोल दिया ना इन्होंने, क्यों झूठ बोल दिया, बोझ और अदावत की वजह से, चिड़ की वजह से, जो नबियों के साथ ऐसे मुतकब्बिर लोगों को होती है, जैसे अबू जहल को थी, उमैया को थी, वलीद, पलीद, इन सब लोगों को चिड़ थी नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो जानते थे सादिक हैं, अमीन हैं और बेमिसल हैं, राइट, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे, इनकार करते रहते थे। वह जहदू बिहा, इन्होंने भी इनकार कर दिया, हालांकि हाल ये था कि अपने दिलों के अंदर यकीन कर चुके थे कि ये निशानियां सच्ची निशानियां हैं। जुल्मन, किस वजह से, जुल्म की वजह से, ठीक है, जुल्म यानी जो मुतकब्बिर इंसान होता है ना, उसके अंदर जो है जुल्म होता है। जुल्म का मतलब क्या होता है कि हक नहीं देना चाहता जिसको देना चाहिए, जिसका जो हक होता है ना उसको वो हक नहीं देता, ये होता है जालिम। और इस अमल को, हक वाले को हक ना देना, इस अमल को कहते हैं जुल्म, ठीक है। तो इन लोगों ने जुल्म करते हुए इनकार कर दिया। वह उलूवन, उलूवन का मतलब अपने आप को बड़ा समझना, आली, जैसे हम कहते हैं ना आली मर्तबत, बड़ी बड़े मर्तबे वाले, राइट, या आला, ताला, ऊंचा, ठीक है, यही सारे, यही लफ्ज यही है। तो उलूवन अपने आप को बड़ा समझते हुए, नबी को छोटा समझते हुए, ठीक है, जिसको के तकबुर का यही मतलब होता है, अपने आप को किसी के मुकाबले में बड़ा समझना, इसी को तकबुर कहते हैं, ठीक है। तो एक तो जुल्म किया कि जहां हक डिजर्विंग था वहां हक नहीं दिया, नबी का हक क्या था, उसके ऊपर ईमान लेकर के आना, उसकी बात का इनका इकरार करना, इकरारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल कल्ब, ठीक है, लेकिन जुल्म और उलूवन की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुफ्सिदीन, क्या आयत का मफहूम ऐसा होगा, उन्होंने लिखा है एक सवाल डायरेक्ट मैसेज में, तो दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्या आयत का मफहूम ऐसा होगा, वह जहदू बिहा जुल्मन व उलूवन वस्तैकनतहा अनफुसुहुम। हाँ, अब अल्फाज को आगे पीछे कर दें तो और आसान हो जाएगा इसके मफहूम को समझना, ठीक है। हालांकि हाल ये था कि वो अपनी जानों के अंदर इसका यकीन कर चुके थे, ठीक है। तो जुल्मन व उलूवन जो है ना, ये जहदू का वो है, मफूल मुतलक जिसको कहते हैं ना, नहव वाले जो है वो इस वाकिफ हैं। तो आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, फंजुर पस आप देख लीजिए, नजर कर लीजिए, देख लीजिए, कई फकाना क्या कैसा हुआ आकिबत, कैसी हुई आकिबत यानी अंजाम, आकिबत का मतलब अंजाम, इवेंचुअलिटी, ठीक है, अल मुफसिदीन इन फसाद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। क्या मतलब ये फसाद करने वाले, ये फसाद करने वाले ये वो वाला फसाद तो करते ही नहीं थे जो कि हम समझते हैं फसाद। इनका तो अपनी कंट्री, इनका तो अपना कंट्री था, राइट। अपने कंट्री में हुकूमत को थोड़ी फसाद करती है, राइट। फसाद तो आवामुन नास करती है, जो बलवाई होते हैं, बलवाई है ना, वो जो बगावत करने वाले लोग होते हैं, जो जो हंगामा करते हैं, जो 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 जुलूस निकालते हैं और नारे मारते हैं, फसाद तो वो लोग करते हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग फसाद कर रहे हैं, हालांकि ये तो हुकूमत वाले लोग थे। तो इसका मतलब क्या है कि फसाद सिर्फ वो नहीं होता जो हम समझते हैं, बल्कि अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह के नबी का इनकार करना असल फसाद तो ये है, सबसे बड़ा फसाद तो ये है, ठीक है। Some people name their boys Ali. Is it correct in light of this usage of Uluwan? Is it correct? इसका exact जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता, ये तो आप किसी प्रॉपर मुफ्ती वगैरह से पूछ लें, लेकिन बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनका के मानी कुछ होता है और उनका इस्तेमाल जो है वो अल्लाह ताला के लिए भी हो रहा होता है, लेकिन उनका मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि करीम, अल्लाह ताला की जात के लिए करीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन मखलूक के लिए भी करीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो जायज है। उसी तरीके से अगर ये भी उन्हीं अल्फाज में से है आली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा आली, ठीक है। अच्छा, खुलासा तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि उनकी बयानुल कुरान से ये खुलासा तफसीर ली गई है, तो वो फरमाते हैं कि इज की तफसीर क्या बनती है, उस वक्त का किस्सा जिक्र कीजिए जब, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो सिर्फ जब होता है, तो जब से जो जुमला शुरू कर रहे हैं तो मतलब क्या कि अब आप जो तिलावत करेंगे ना मुशरिकीन के सामने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में से सबसे पहला काम क्या था, यत्रु अलैहिम आयाती ही, ये तिलावत करते हैं इन मुशरिकीन या मक्के मुकरमा वालों के ऊपर अल्लाह ताला की आयात को। तो अब जो आप तिलावत कर रहे हैं तो मकसद क्या है, इनको याद दिलाइए वो वक्त, ठीक है, या तस्किरा कीजिए इनको इनके सामने उस वक्त का, जबकि इस का तर्जुमा जबकि मदियन से आते हुए कोहितूर के करीब रात को सर्दी के वक्त पहुंचे और मिस्र की राह भी भूल गए थे, ठीक है। मदियन से जो है वो ऐसा लगता है कि यानी ये उर्दुन वगैरह का कोई कोई मकाम है ना, तो वहां से जो है ना मिस्र की तरफ आ रहे थे ना, तो ये साउथवर्ड्स ट्रैवल कर रहे थे, साउथवर्ड्स, ठीक है। तो अगर साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगे वादिये ती के अंदर, ठीक है, तो कोहितूर जो है ना वो दाहिनी हाथ पे पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से सूरह कसस के अंदर जो अल्लाह ताला ने इसी वाकये को दूसरे अल्फाज में बयान किया ना, तो वहां फरमाया था फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी, ठीक है, कि दाएं वादी के किनारे पर उनको आग नजर आई, ठीक है, तो इनके राइट साइड के ऊपर ये आग पड़ रही थी, अयमन जो है वो यमीन से निकला, यमीन का मतलब होता है दाहना। तो बहरहाल तो ये वहां पर पहुंचे तो इनको वैसे तो मिस्र के लिए जो है वो उस इतना आगे निकलना नहीं चाहिए था, बल्कि उधर उधर ऊपर ही से जाना जहाँ पे स्विस कनाल वगैरह है, तो वहीं से इनको क्रॉस करके जो है वो मिस्र की तरफ आ जाना चाहिए था। उस जमाने में तो स्विस कनाल बनी भी नहीं थी, ठीक है ना, तो जमीनी रास्ता था जहां से सब लोग जो है वो शाम से मिस्र, मिस्र से शाम, ये बहुत ज्यादा यानी ऑफ ट्रेवल्ड पाथ था ये। लेकिन मूसा अलैहि सलाम जो भी अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी ऐसी थी कि वो रास्ता भटक भटक गए। तो उस वक्त क्या हुआ कि मूसा अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने तूर की तरफ आग देखी है, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने महसूस किया है कि एक आग है, ठीक है, तो मैं अभी जाकर वहां से या तो रास्ते की कोई खबर लाता हूँ, सआती को मिन्हा बिखबर, अनकरीब, सीन का मतलब होता है अनकरीब, ठीक है, वहां से तुम्हारे लिए खबर देकर के आता हूं तुम्हारे पास। आग का, या तुम्हारे पास वहां से आग का शोला किसी लकड़ी वगैरह में लगा हुआ लाता हूं, ठीक है, लकड़ी जला करके मैं लेकर के आता हूं ताकि तुम सेक लो, ठीक है। लेकिन कितने अच्छे शोहर थे, बीवी को तकलीफ हो रही है, सर्दी लग रही है, तो खुद सर्दी की परवाह किए बगैर कि नहीं भी तुम्हें लग रही है तो मैं भी तो आखिर को इंसान हूं ना, मुझे भी तो लग रही है, तो चलो बस हम दोनों इधर ही बैठे है ना वो ठुठरते रहते हैं। नहीं, शोहर का काम क्या है, फिजिकल मुशक्कत, बाहर का काम शोहर ने करना है, फिजिकल मुशक्कत, फतश का, राइट। अभी जो पिछले बयान के अंदर भी बात हो रही थी, पिछले बयान के अंदर, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जी मुशक्कत तो तुमने बर्दाश्त करनी है, बेगम साहिबा ने मुशक्कत बर्दाश्त नहीं करनी। हाँ, घर के अंदर वाली मुशक्कत तो वो करती है बर्दाश्त, बच्चों को उठाना, बच्चों को जो है वो साफ करना, बच्चों का डायपर चेंज करना, बच्चों के लिए कि जो है वो रोना धोना पीटना जो कुछ भी है वो सारा कुछ जो है वो घर के अंदर वही कर रही होती है। लेकिन उस मुशक्कत के ऊपर बाहर वाली मुशक्कत जो होती है ना वो ज्यादा बड़ी मुशक्कत, एक अंदाज से ज्यादा बड़ी मुशक्कत। आजकल तो जरा उल्टा ही मामला हुआ वैसे, है ना, जो व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं तो वो तो माशाल्लाह गाड़ी में बैठे सुबह को, है ना, एसी ब्लास्ट के ऊपर ऑन किया और जो है वो ड्राइव करके, चलो ठीक है अगर ट्रैफिक है, जरा 1 घंटे की ट्रैफिक है तो उसके अंदर कम्यूट के अंदर भी मुशक्कत हो ही जाती है, वैसे हमें भी अंदाजा इस बात का पता है। लेकिन फिलहाल अगर करीब ऑफिस है तो गाड़ी में बैठे ऑफिस में गए, ऑफिस के अंदर जो है वो लिफ्ट में बैठे अपने क्यूबिकल के अंदर पहुंच गए, और क्यूबिकल के अंदर जो है ना वो पहले तो लैपटॉप ऑन करके जरा खबर वबर देखी और क्या हो रहा है भाई दुनिया के अंदर वो सब देखा, फिर उसके बाद जरा अपनी ईमेल चेक करी, अच्छा ईमेल के अंदर कोई टास्क असाइन किया हुआ, चलो जी उस टास्क के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर के अंदर जो है वो कॉफी ब्रेक हो जाता है, फिर चले जाते हैं वहां पर कॉमन एरिया के अंदर कॉफी पीने के लिए, और फिर कॉफी पी करके वापस आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी इधर उधर ईमेल देखी, फिर दोबारा से जरा अपने आप को काम के अंदर वापस लगाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद जो है लंच ब्रेक हो गया भाई, ठीक है। फिर लंच ब्रेक के बाद जो है फिर थोड़ी देर इधर उधर काम वाम किया, जरा दिमाग लड़ाया, और उसके बाद फिर जो है वो एक असर का टाइम हो गया, असर ब्रेक हो गया वगैरह। तो मर्दों की मुशक्कत जो हुआ करती थी आजकल रिवर्स हो गया मामला, मर्द जो है वो अच्छे खासे इत्मीनान के साथ जॉब से होकर के वापस आ रहे होते हैं, और औरत जो होती है वो टिपिकली यूजली, मतलब तो जाहिर है एक्सेप्शंस दोनों तरफ ही हैं हर हर मामले में, लेकिन घर के अंदर वो खाना भी पका रही है और बच्चे भी संभाल रही है और भी बहुत सारे आपके खानदान वालों को भी संभाल रही है और उनकी बातें भी सुन रही है और सब कुछ। बहरहाल, तो मूसा अलैहि सलाम के जमाने में तो कम अज कम ऐसा नहीं हो रहा था, तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा तुम इधर ही बैठो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, तो साथीकुम मिन्हा बिखबरिन, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। बीवी का भी तस्करा कर दिया वहां पर, कुम कुम की जमीर यहाँ पे एक बीवी की तरफ पॉइंट कर रही है, कई बीवियां नहीं थी इनकी वहां पर, एक ही बीवी थी, और बहुत ही तमीज के साथ आप जनाब का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि हम भी घर वालों के साथ जो है ना वो अदब और तमीज के साथ रहना सीखें, अदब और तमीज के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है। ये मर्दों की क्लास है, इस वजह से मर्दों को ही नसीहत करनी है ना, भी औरतों की क्लास होती है तो औरतों को नसीहत करते हैं। अब आप औरतें कहेंगे नहीं मर्दों को क्यों नहीं करते, मर्द कहेंगे औरतों को क्यों नहीं करते, भाई जिसकी क्लास है उसको ही नसीहत करेंगे। और वाकई दोनों तरफ मुख्तलिफ हालात होते हैं, कहीं पे जो है वो मर्द बहुत ज्यादा बदतमीजी और जुल्म का मामला कर रहे होते हैं, और कुछ जगहों पर के ऊपर औरतें भी कर रही होती हैं, लेकिन ज्यादातर मर्द जुल्म और अल्फाज का गलत इस्तेमाल, जुबान का गलत इस्तेमाल, हत्ता के हाथ का भी गलत इस्तेमाल हो रहा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर कौन है, वो है जो कि अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर, राइट। ये नहीं फरमाया कि कौन उम्रे सबसे ज्यादा करता है वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है, किसकी दाढ़ी ज्यादा लंबी है वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है, किसकी तहज्जुदें कभी कज़ा नहीं होती वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है, नहीं, खैरुकुम लि अहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है जो कि अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। वह अना खैरुम लि अहली, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको प्रूफ करके दिखाया अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर कि अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतरीन मामला करने वाले नबी अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। तो अंबिया का यही तरीका होता है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई खबर लेकर के आता हूँ, या तुम्हारे पास वहां से आग का शोला किसी लकड़ी वगैरह में लगा हुआ लाता हूँ ताकि तुम सेंक लो। जब उस आग के पास पहुंचे तो उनको मिनजानबिल्ला आवाज दी गई कि जो इस आग के अंदर है। भाई बीवी सिंफ नाजुक होती है ना, औरत को अल्लाह ताला ने सिंफ नाजुक बनाया है, ठीक है। तो अब शौहर जो है वो सिंफ नाजुक ना बने, वो सिंफ आहन बने और बीवी को सिंफ नाजुक के तरीके से वो ट्रीट करे, तब वो सिंफ नाजुक रहेगी। जब शौहर साहब जो है वो सिंफ नाजुक बन गए तो फिर बीवी को बस कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से दिल के अंदर एक वदियत हो जाती है कि अब तुम बन जाओ सिंफ आहन, क्योंकि ये हजरत जो है ना ये तो सिंफ आहन अब बनने के लिए तैयार नहीं है, ये तो बन गए सिंफ नाजुक, तो तुम ही बन जाओ भाई सिंफ आहन। अब वो सड़क पे जाकर के नारे मार रही होती है तो हम कहते हैं और औरत बात क्यों शुरू हो गया भाई, ये क्यों कर रही है इस तरीके से, ये क्यों कह रही है कि हम मोजे नहीं संभालेंगे और हम फलाना नहीं करेंगे और फलाने नहीं करेंगे, राइट। अपने गिरेबान में झांक के हम नहीं देखते कि हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। अगर हम अपना काम करें तो फिर वो क्यों जा करके फिर इस तरह की बातें करें, उनको कोई चले। तो फरमाया कि जो इस आग के अंदर है, ठीक है, यानी फलम्मा जा आहा, जब वो वहां पर पहुंचे ना उस आग के पास, नू दिया तो उनको पुकारा गया, अनबूरे का मन फिन नारी के बरकत है जो इस आग के अंदर है, बारा का युबारको मुबारकतन फहुआ मुबारकुन व बूरे का युबारको मुबारकतन फहुआ मुबारकुन, राइट। सर पढ़ने वाले लोगों को गर्दान इंशाल्लाह याद होगी। तो बरकत उस जो जो उस आग के अंदर है यानी फरिश्ते। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो तफसीर बयान करी वो ये कि जो आग के अंदर है ना वो फरिश्ते मुराद है यहाँ पर, आगे इसकी तफसील आ रही है मारूफ मसाइल के अंदर। तो फरमाते हैं कि उन पर भी बरकत हो और जो इस आग के पास है, मन हौलहा इसके इर्द गिर्द है यानी इसके इसके अराउंड है, सराउंडिंग में है, तो उसके ऊपर भी बरकत हो, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम इस आग के बाहर थे आउटसाइड, इस पर भी बरकत हो। ये दुआ बतौर तहिया व सलाम के है, जैसे मुलाकाती आपस में सलाम करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना ये जो बरकत वाली वाला जो 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 सैल्यूटेशन किया ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए सलाम था, ठीक है। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम, अब तफसील में मजीद देखते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कि चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम जानते नहीं थे कि ये नूर नूरे अनवार इलाहिया से है, ठीक है, इसलिए खुद सलाम नहीं कर सके। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो जलती हुई आग लेने के लिए गए थे, उनको क्या पता था यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है, तो उन्होंने आकर के सलाम में पहल नहीं करी, वरना सुन्नत तो ये ना कि सलाम में पहल करें, लेकिन आप आग को तो नहीं जाके सलाम करते ना, तो इसलिए खुद सलाम नहीं किया उन्होंने। तो मिन जानिबिल्लाह उनके उन्स के लिए सलाम इरशाद हुआ, ठीक है। यानी जब हम कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट सलामती से करते हैं या अच्छे कलिमात से करते हैं ना, तो फिर दिल जो है वो माइल हो जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है और यही अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें भी सिखाया है कि सलाम से इब्तिदा करो या अच्छे कलाम से, पॉजिटिव नोट से शुरू करो बात को, ठीक है ना। बात शुरू नेगेटिव से ना करो, बाद में बेशक नेगेटिव चीजें भी तुम डिस्कस कर लेना, लेकिन शुरू में ना करना, ठीक है ना। जैसे अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद को शुरू किया, ठीक है, तो शुरू कैसे किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ही अर रहमान अर रहीम, रहमत की दो सिफतें बयान फरमाई, एक में नहीं दो सिफतें बयान फरमाई, पॉजिटिव नोट से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें यानी तारीफों के कलमे से शुरू किया, फिर उसके बाद सूरह बकरा आ गई, सूरह बकरा के अंदर भी काफिरों के अजाब से शुरू नहीं किया, मुनाफिकीन के तस्करे से शुरू नहीं किया, मुमिनीन के तस्करे से शुरू किया, ठीक है। तो सलाम भी इसी तरह से है, अस्सलामु अलैकुम, सलामती है तुम्हारे ऊपर, तो यानी ये दोस्तों के साथ इस तरह से मामला किया जाता है। अब दुश्मन के साथ तो आप पहले प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो पता चला उधर से तलवार चली और आपका सर ही उड़ करके कहीं दूर जा करके गिरा, ठीक है। तो दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करना होता भाई, ठीक है। हाँ, दुश्मन के साथ अभी जब लड़ाई शड़ाई शुरू नहीं हुई है तो उस वक्त उसके साथ नरमी से बात करनी शुरू करनी होती है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि ये दुआ बतौर तहिया व सलाम के है, जैसे मुलाकाती आपस में सलाम करते हैं, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम जानते ना थे कि ये नूर अनवार इलाहिया से है, इसलिए खुद सलाम नहीं कर सके। तो मिन जानिब अल्लाह उनके उन्स के लिए सलाम इरशाद हुआ। और फरिश्तों को मिला लेना शायद इसलिए हो कि जिस तरह फरिश्तों को सलाम हक तआला के कुर्ब खास की अलामत होती है, ये सलाम भी मूसा अलैहि सलाम को कुर्ब खास की बशारत हो गया। यानी फरिश्ते जो है ना, उनका जो रहने की जगह है, जो फरिश्तों के घर हैं, ठीक है, या फरिश्तों की जो यानी घर से और भी चीजें जहन में आ सकती हैं, लेकिन जो फरिश्तों का एक परमानेंट लोकेशन है वो क्या है? आसमान। ठीक है, और आसमान जो है वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है, अर्श अर्श इलाही के ज्यादा करीब है, तो फरिश्तों को कुर्ब नसीब है अल्लाह ताला का। ठीक है, तो फरिश्तों का भी तस्करा कर दिया, तो उसके अंदर फिर मूसा अलैहि सलाम को भी एक तरीके का वही कुर्ब, जैसे कि फरिश्तों को कुर्ब हासिल है, तो दोनों को फिर एक ही कलाम के अंदर अल्लाह ताला ने सिमो दिया, फरिश्तों को भी और मूसा अलैहि सलाम को भी, तो उनका भी कुर्ब इससे साबित हो गया कि वो भी करीब लोगों में से है। और इस अमर के बतलाने के लिए कि ये नूर जो बेशक्ल नार है, नार की शक्ल के अंदर जो ये नूर है ना, खुद हक तआला की जात नहीं है, इरशाद फरमा दिया। ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रंग, जिहत या जिहाद, जिहाद का मतलब डायरेक्शंस, जिहत का मतलब एक डायरेक्शन, जिहाद ऑल डायरेक्शंस या मल्टीपल डायरेक्शंस, मिकदार, मिकदार किस चीज को कहते हैं, जैसे उर्दू में हम मिकदार जो है वो क्वांटिटी को, अंग्रेजी वाली क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन मिकदार का मजीद जो गहरा मतलब है या वसी मतलब है वो क्या? एनी थिंग दैट हैज ए प्री डिटर्मिंड साइज, शेप, फॉर्म, राइट, लिमिटेड, बल्कि प्री डिटर्मिंड भी नहीं, लिमिटेड, उसकी लिमिट्स मुकद्दर हुई हुई हैं, लिमिट्स डिफाइन हुई हुई हैं, ठीक है, कदर, कदर से निकला असल में लफ्ज, ठीक है, सब बिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा, तो फकदर सुभान अल्लाह, फकदर वहदा, जैसे ये भी है, कदर अल्लाह ताला ने जो भी तखलीक करी है ना, तो हर मखलूक की अल्लाह ताला ने कदर सेट कर दी कि जी उसने वो ऐसी रहेगी, ऐसी उसकी शक्ल रहेगी, इतना उसका साइज रहेगा, ये उसका पर्पस ऑफ लिविंग रहेगा, इतनी उसकी जिंदगी रहेगी, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने लिमिट कर दी हर चीज के साथ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक करी। ठीक है, तो अल्लाह ताला का अपना मामला ऐसा नहीं है कि वो भी जो है वो लिमिटेड है, मुकद्दर है, ठीक है, नहीं, तो अल्लाह ताला की जो जात है ना, वो जिहाद से और रंग से और मकदार से और हद बंदी वगैरह से पाक है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, ये किसी चीज की लिमिटेशंस बयान करती हैं, हुदूद बयान करती हैं, और अल्लाह ताला की हुदूद नहीं है। ठीक है, अब ये एक लंबी अकीदे की बहस है, जिस करके हम ना मुतहम्मिल हो सकते हैं यहाँ पे, और ना उसकी यहाँ पे तो जरूरत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इन सब से पाक है, यानी ये नापाकियां हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, रंग का होना, जिहाद का होना, मकदार का होना, हदबंदी का होना, ये तो फॉल्ट्स हैं, ये तो कमी कोताहियां हैं, अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है। अच्छा, और इस नूर में ये चीजें पाई जाती हैं, बस ये नूर जाते खुदाबंदी नहीं है, यानी ये जो नूर नजर आ रहा है ना तुम्हें, इसका तो एक रंग भी होगा, गोल्डन टाइप का, जैसे आग जो है वो एक सुनहरी किस्म का उसका रंग होता है। जिहाद क्या मतलब? मूसा अलैहि सलाम को तूर की जिहत में, तूर की डायरेक्शन में ये आग नजर आ रही है, चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ तो नजर नहीं आ रही ना, तो इस आग की तो एक जिहत है, ठीक है ना, इस आग की एक मिकदार है, क्या मतलब कि ये हर तरफ नहीं फैली हुई है, एक सर्टन एरिया के अंदर है खाली ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आग है ना, ये अल्लाह की जात नहीं है ये, ठीक है, इसका बहुत जबरदस्त बयान आगे मारूफ मसाइल के अंदर मजीद आ रहा है, इंशाल्लाह वहीं पे मजीद पढ़ेंगे। बस ये नूर जो है ना, ये जाते खुदाबंदी नहीं है, और मूसा अलैहि सलाम अगर इस मसले से खाली जहन हो तो इसकी तालीम है, भाई मूसा अलैहि सलाम उस वक्त जो है वो इनके पास ये इल्म मौजूद नहीं था अल्लाह ताला के जात के बारे में। तो इस तरह से ये बात करना तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इन्नी अनल्लाहुल अजीज अल हकीम, ठीक है। और उसके अलावा जो आग का जिक्र हुआ, तो ये सारी चीजें मूसा अलैहि सलाम को इल्म दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि नबियों के टीचर जो होते हैं वो अल्लाह ताला ही होते हैं, है ना। मूसा अलैहि सलाम के मामले में बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने डायरेक्टली मूसा अलैहि सलाम को टीच करी। तो इस तरह से अल्लाह ताला बराह रास्त टीचर बन गए मूसा अलैहि सलाम के, जबकि बाकी जो अंबिया हैं तो उनके साथ अल्लाह ताला ने बीच में जिब्राइल अमीन का वास्ता बना दिया टीचर के लिए, ठीक है। तो जिब्राइल अमीन जो है वो फिर बाकी नबियों के टीचर बन गए, ठीक है, उस्ताद बन गए, सही है। तो मूसा अलैहि सलाम के उस्ताद है, तो भाई जाहिर है उस्ताद का काम क्या होता है, तालीम देना होता है, ठीक है। तो अगर मुफस्सरीन लिख रहे हैं कि अगर तो मूसा अलैहि सलाम को इस बात का उस वक्त तक इल्म नहीं था, तो इस तरीके से मूसा अलैहि सलाम को इसकी तालीम मिल गई। और अगर दलाइल अकलिया और फितरत सहीहा की बिना पर उनको पहले से ये बातें मालूम हो तो मजीद समझाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बात की गई तो मजीद उनको फर्दर डिटेल्स या फर्दर जो है वो इसको एज अ रिमाइंडर उनको ये बातें बता दी गई, ठीक है। यही बात है कि ये जो आग है ना, ये आग अल्लाह की जात नहीं है, बल्कि आग के अंदर तो फरिश्ते हैं और आग के बाहर जो है वो आप हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बरकत हो, इन सारी चीजों को सलामती हो, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद नहीं है इसके अंदर, अल्लाह ताला तो बाहर से इसके ऊपर सलामती वगैरह भेज रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। काफी जरा कॉम्प्लिकेटेड सा ये हो गई बहस। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना होता है पूछिएगा, वरना आगे चल रहे हैं, लिख करके पूछने का तरीका होता है इस क्लास के अंदर। तो फरमाते हैं कि ए मूसा, बात ये है कि, यानी ये किस चीज का, या मूसा इन्नहु अनल्लाहु अजीजु हकीम, बात ये है कि मैं जो ये बेकैफ कलाम कर रहा हूं, अल्लाह मैं अल्लाह हूं, जबरदस्त हिकमत वाला, ठीक है ना, यानी अल अजीज हूं और अल हकीम हूं, जबरदस्त भी और हिकमत वाला भी हूं। और ए मूसा, ये तफसीरन लिखा है वरना दोबारा या मूसा रिपीट नहीं किया अल्लाह ताला ने, अल्की असा, तुम अपना असा जमीन पर डाल दो। चुना चुन उन्होंने डाल दिया तो वो अजदहा बनकर लहराने लगा, ठीक है। फलम राहा तहतजु कअन्नहा जान्नुन, तहतजु ठीक है, यानी लहराने लगा, फिनफनाने लगा, इस तरह का एक अजदहा बन गया। पाइथन बहुत मोटा बड़ा इस किस्म का सांप है। तो जब उन्होंने उसको इस तरह हरकत करते देखा जैसे सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे, ठीक है, और पीछे मुड़कर भी तो ना देखा, ऐसे भागे कि यानी खौफ के मारे मुड़े भी नहीं, वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, पीछे मुड़े ही नहीं। तो इरशाद हुआ कि ए मूसा डरो नहीं, या मूसा ला तखफ। फिर उसके बाद नाम लेकर के अल्लाह ताला एक बार फिर मूसा अलैहि सलाम को बुला रहे हैं, ए मूसा ला तखफ, नहीं खौफ खाइए, क्योंकि हमने तुमको पैगंबरी दी है, ठीक है, और हमारे हुजूर में, यानी हमारे मौजूदगी में, या हमारे जो है वो दरबार में, ठीक है, यानी पैगंबरी का एजाज अता होने के वक्त पैगंबर ऐसी चीजों से जो कि खुद उनकी पैगंबरी की दलील यानी मोजजात हो, नहीं डरा करते, ठीक है। मूसा अलैहि सलाम को ना अल्लाह ताला क्या शफकत के साथ जो है ना, जैसे किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने तो मूसा अलैहि सलाम की तालिब इल्म बहुत और बिल्कुल इब्तदाई तालिब है, ठीक है। तो उनको ऐसे कहते हैं ना, भैया ये तो हमने आपको, हम तो आपको जैसे कभी कभी होता है ना कि स्टेज के ऊपर जो है वो किसी को बुलाया गोल्ड मेडल देने के लिए, तो अब जो है वो गोल्ड मेडल जैसे उनको पता चला कि उनकी फर्स्ट पोजीशन आई है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, कुछ लोग तो आंसुओं से रोना शुरू हो जाते हैं और कुछ तो दाड़े मार के रोना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है वो बड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, ये कोई रोने का वक्त है, इस वक्त नहीं रोते, ये तो खुश होने का वक्त है, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है ना। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को, ये कोई डरने का वक्त नहीं है भाई, हम तो आपको अवार्ड दे रहे हैं, हम तो आपको एजाज दे रहे हैं, ठीक है ना, अपना नबी बना रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस वक्त आप डरिए नहीं, ये तो आपकी आपके अपना असर है जिसको कि अभी हमने वो जाती तौर पर अजा बना दिया। तो चुनाचे उन्होंने डाल दिया तो अजा उनके लहराने लगा। सो जब उन्होंने इसको इस तरह हरकत करते देखा जैसे सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी तो ना देखा। इरशाद हुआ कि ए मूसा डरो नहीं, क्योंकि हमने तो तुमको पैगंबरी दी है, और हमारे हुजूर में यानी पैगंबरी का एजाज अता होने के वक्त पैगंबर ऐसी चीजों से जो कि खुद उनकी पैगंबरी की दलील यानी मौजजात हो नहीं डरा करते, यानी तुमको भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, मगर जिससे कोई कसूर लफ्जिश सरजद हो जाए और वो उस लफ्जिश को यानी कसूर गलती कोताही को याद करके डरे तो मुजायका नहीं है, ठीक है ना। ऐसा डरना तो फिर सही है कि भाई गलती हो गई तो अब अल्लाह की जात ही ऐसी है, इतनी बड़ी है, इतनी अजीम है कि अल्लाह की जात के साथ जिसने कुछ गड़बड़ कर दी हो, कुछ कैसी भी करी हो, छोटी हो के बड़ी करी हो, तो उसको तो फिर दिल के अंदर खौफ होना चाहिए नहीं। जैसे स्कूल के अंदर जो है वो प्रिंसिपल साहिबा जो है ना, या हेडमास्टर साहब जो है वो किसी बच्चों को बुलवाएं जरा क्लास में से, है ना, प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो बच्चे के दिल में आएगा वो पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कौन सी ऐसी मुझसे गलती हो गई कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। लगता है उन्होंने मेरे अब्बा को बुलाया हुआ और अब्बा के सामने ना वो मेरी कुछ खूब शिकायत करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसने कोई ऐसी गड़बड़ करी भी होगी ना तो इसको ऐसी डर लगेगा ना, ठीक है। तो भाई अगर किसी ने कोई लफ्जिश करी है तो उसको डरना चाहिए, ठीक है ना, वरना तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी मजे की तफसीर आगे आ रही है, लेकिन इसकी निस्बत भी ये कायदा है कि अगर कसूर हो जाए, यानी अल्लाह के यहाँ ये कायदा होता है कि बड़ों के सामने यही होता है कि भाई अगर कसूर हो जाए फिर बुराई होने के बाद बुराई की जगह नेक काम कर ले, यानी तौबा कर ले, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तो मैं उसको भी माफ कर देता हूँ क्योंकि मैं मगफिरत वाला रहमत वाला, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, ये सारी तफसीर लिख दी। क्यों तफसीर लिखी ये वाली? क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे गफूर रहीम को जो लफ्ज लिख दिया ना, उससे ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिसने जुल्म कर लिया बेशक उसको डरना चाहिए अपनी इस हरकत के ऊपर, लेकिन वो मुझसे माफी मांगेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं माफ करूंगा नहीं उसको, नहीं, मैं उसको माफ कर दूंगा, कुछ भी किया हो उसने, मुझसे माफी मांगेगा मैं उसको माफ कर दूंगा, ठीक है। शिर्क भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे अगर माफी मांगे, अगर माफी मांगे, ठीक है ना। ये नहीं कि माफी मांगे बगैर ही, तौबा किए बगैर ही शिर्क अल्लाह ताला माफ कर देंगे, नहीं। शिर्क तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया मैं नहीं माफ करूंगा। शिर्क से कम दर्जे के जो गुनाह होते हैं वो तो शायद मैं माफ कर दूं, शायद मैं माफ ना करूं, उसमें पॉसिबिलिटी है माफी की। शिर्क के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है माफी की, ठीक है। लेकिन माफी मांगेगा मुशरिक, जाहिर है जितने मुशरिक मुसलमान होते हैं तो क्या करते हैं, तौबा करते हैं अपने शिर्क से, जब भी तो मुसलमान होते हैं। ऐसे कोई थोड़ी कि शिर्क भी चल रहा है और साथ साथ जो है वो काबतुल्ला के चक्कर भी लगा करके आ गए, मुसलमान हो गया भाई जाओ जाकर के काबतुल्ला का चक्कर लगा के आ जाओ और फिर आकर के वापस दोबारा अपना बुत परस्ती कंटिन्यू कर लेना, नहीं, बुत परस्ती से तौबा करते हैं तब मुसलमान होते हैं, फिर उसके बाद काबतुल्ला के चक्कर लगाने का फायदा होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो हमारे हुजूर में ये कायदा है कि अगर माफी मांगोगे तो मैं माफ कर दूंगा। अच्छा, फिर बुराई, अच्छा ये हो गया, इसलिए कि मैं मफ़रत वाला रहमत वाला हूँ, ये इसलिए फरमा दिया कि असा के मोजज़े से मुतमईन हो जाने के बाद कभी अपना किस्सा तिब्बती को कत्ल करने का याद करके परेशान हूं, इसलिए इसलिए इससे भी मुतमईन फरमा दिया ताकि वहशत जारी जाती रहे, ठीक है। क्योंकि इनसे भी खता हो गई थी, वहशी को वो जो तिब्बती को जो मार दिया था तो वो जायज मारना नहीं था। और ए मूसा, इस मोजज़ा असा के सिवा एक मोजज़ा और भी अता होता है, वो ये कि तुम अपना हाथ गरेबान के अंदर लेके जाओ और फिर निकालो तो वो बिना किसी ऐब यानी बगैर किसी मर्ज बर्स वगैरह के नहायत रोशन होकर निकलेगा, ठीक है। यानी एक मर्ज होता है जिसको कि आज के दौर के अंदर भी उसका नाम मुझे याद नहीं है क्या क्या कहते हैं उसको, जिसके अंदर स्किन जो होती है ना वो वाइट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये तुम ये मत समझना कि तुम्हारा भी जो ये हाथ सफेद हो गया ना, ये उस मर्ज की वजह से हो गया, ठीक है। इसको कि उर्दू में बर्स कहते हैं और इंग्लिश में उसके लिए, तो अगर किसी को नाम आता हो तो बता सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बल्कि वो इंतहाई रोशन होकर के निकलेगा। और ये दोनों मुआवजे उन 9 मुआवजों में से हैं कि जिनके साथ तुमको फिरौन और उसके कौम की तरफ भेजा जाता है। बर्स को तो लेप्रेसी कहते हैं, लेकिन विटिलिगो, विटिलिगो पढ़ते हैं इसको, उसको पढ़ते कैसे हैं? हाँ, कुछ इसी किस्म का नाम है जो कि आजकल की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो फिर और उसके कौम की तरफ भेजा जाता है क्योंकि वो बड़े हद से निकल जाने वाले लोग हैं, गर्ज जब उन लोगों के पास हमारे दिए हुए मुआवजे पहुंचे। क्योंकि फिरौन और उसके जो साथी थे, ये दुनियावी एतबार से भी बहुत यानी एक तो इंसानों के ऊपर जुल्म भी करते थे और अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा भी समझते थे, और दीनी एतबार से भी इनका क्या हाल था कि सच्चे दीन को पहचानते थे फिर भी उसका इनकार करते थे, ठीक है ना। जैसे इन लोगों ने आयतों को देखा और जानने के बावजूद इनकार कर दिया, तो ये कहलाता है हद से गुजर जाना। गर्ज जब इन लोगों के पास हमारे दिए हुए मुआवजे पहुंचे जो नहायत वाज़ह थे, यानी इब्तदाई दावत में 2 मुआवजे दिखाए गए, फिर वक्तन फवक्तन बाकी भी दिखाए जाते रहे, तो वो लोग इन सबको देख कर भी बोले कि ये सरीह जादू है, ठीक है। और गजब तो ये था कि जुल्म और तकबर की राह से इन मुआवजात के बिल्कुल मुनकर हो गए, इनकार करने वाले हो गए, हालांकि अंदर से उनके दिलों ने इसका यकीन कर लिया था। वस्तयकना था, हाल उनका क्या था, अंदर से ये जान गए थे ये सच्चा मौजा है, ये मौजा ही है मतलब। सो देखिए कैसा बुरा अंजाम हुआ इन मुफसिदों का, दुनिया में गर्क हुए और आखिरत में जलने की सजा पाई। आते बकुल मुफसिदी। 2 मिनट रह गए क्लास के खत्म होने में, किसी को कोई सवाल हो या इन जनरल भी कोई कमेंट हो तो इस दौरान हम वो डिस्कस कर सकते हैं। मारूफ मसाइल फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। माशाल्लाह वाकयात शुरू हो गए मूसा अलैहि सलाम के, लेकिन इनके बाद फिर असल जो उसका वजह तस्मिया है इस सूरत की, यानी इस सूरत का नाम जो है जिस वजह से है, वो है हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का वाकया। इसके अंदर उस चूंटी का जिक्र है, उसको नमल कहते हैं, तो वो फिर बाद में शुरू होगा मूसा अलैहि सलाम के वाकये। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम بنجل بتنوافق أو أنا على الحمد لله.